ओम शांति। आज का एक प्रश्न है, मैं 4 घंटे बस में ट्रैवलिंग करता हूँ, ऐसी भीड़ व शोर शराबे के बीच में योग का अभ्यास कैसे करें? मैं क्या करता हूँ, 4 घंटा रोज ट्रैवलिंग करता हूँ, तो इस बीच में अभ्यास कैसे करें योग का? क्या उत्तर है? तो 4 घंटा ट्रैवलिंग के समय, सफर के समय योग कैसे करें? एक तो जो भी दिखते हैं उनको आत्मा देखना, और लौकिक में अलौकिक को ही कैसे ट्रांसफर करें? अच्छा, तो ये समझे कि मैं रूहानी टूर कर रहा हूँ, और हाँ, जो जो जगह आती है, जो जो हमें दिखाई देते हैं सफर के दरमियान, उन उन स्थानों को सकाश देते जाना। जैसे यहाँ से हम अगर आबू रोड जा रहे तो क्या क्या कर सकते हैं? साथ वालों की सेवा भी कर सकते हैं, और जो भी सीन दिखाई देते हैं उनको भी सकाश दे सकते हैं। तो प्रकृति को, व्यक्तियों की सेवा करते करते जाना है, और बुद्धि एकाग्र भी होनी चाहिए, इतना शोर शराबा है तो। और कल हमने देखा था अल्फाबेट योग, जिसमें हमने ए से लेकर तो जेड तक के योग से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी देखी थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं उसको। ए फॉर एम, मतलब अभी हम सफर की बात, तो सफर की बात से जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से आबू रोड जाना है तो हम क्या लक्ष्य लेकर जाए? पहले तो एक लक्ष्य हो, जैसे अमृत वेले भी एक लक्ष्य हो, ए फॉर एम। दूसरा बी, ये योग के लिए है कि बी से अपने भाग्य को याद करे या कोई ब्लेसिंग ले ले। जैसे कहीं पर भी जाना है तो एक वरदान ले ले और उसी वरदान का चिंतन करते हुए जाए फिर एक घंटा। जैसे एक वरदान है बी फॉर ब्लेसिंग, कौन सा भी वरदान हम ले सकते हैं, सफलता मूर्त भव, तो मैं सफल हूँ, उस सफलता का वरदान, उस सफलता के ऊपर चिंतन करते करते जाएंगे। पवित्रता का वरदान, पवित्रता पवित्र भव, तो पवित्रता है तो सुख शांति है, तो वो सुख और वो शांति मेरे पास है। दूसरा, अगले संडे की मुरली में आए सुख की शैया, शांति की शैया, सुख की शैया में लेट कर जाना है। मैं जैसे सुख की शैया कहाँ लेटा हूँ, लोग धक्के मार रहे हैं या जो भी है, परंतु ये समझना है कि मैं सुख की शैया पर लेटा हुआ। तीसरा है कन्वर्सेशन, सी फॉर कन्वर्सेशन। योग में एक नया कन्वर्सेशन, एक नया वार्तालाप बाबा के साथ, तो ये सफर में भी यही कर सकते हैं कि सफर कर रहे हैं, साथ में हमारा आंतरिक वार्तालाप चल रहा है बाबा के साथ। डी फॉर ड्रेस, अभी नीचे जाना है तो कौन सा ड्रेस पहन के जाए, अभी चॉइस कर सकते हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो अलमारी खोलते हैं ना, बहुत सारे ड्रेस है, अभी एक फरिश्ते का लटका हुआ है, एक ब्राह्मण का लटका हुआ है व्हाइट वाला, ब्रह्मा कुमार वाला, और तीसरा लटका है फरिश्ते का लटका हुआ है अदृश्य। तो सतियों की ड्रेस है, कोई भी ले लो। तो अलमारी खोलो और रूहानी अलमारी जो है उसको खोल के उसमें जितने ड्रेस टंगे हुए हैं कोई भी एक ड्रेस पहनकर फिर नीचे एंट्री करनी है, वो बस में, चाहे फ्लाइट, चाहे बस, या तो चाहे ट्रेन, या और भी कोई, इसमें भी फोर व्हीलर, सेकंड टू व्हीलर, क्या है, कैसा है, एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन, कैसा है? बहुत भीड़ वाले है, अकेले है, बीच की सीट है, बाहर की सीट है, खड़े हैं, जगह नहीं है, कहीं पर भी हो, फिर एनर्जी, एक नई ऊर्जा भर ले जाने से पहले। नहीं तो ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग से थकान होती है, पहले यही संकल्प कर ले कि मुझ में इतनी ऊर्जा भरी हुई है, एक नई ऊर्जा को अपने अंदर भर ले। ई फॉर एनर्जी, एफ फॉर फॉर्म, अपना एक नया फॉर्म, एक तो ड्रेस पहन लिया, दूसरा फॉर्म कि मैं किस फॉर्म में जाऊं, सुपर हीरो के रूप में जाऊं, सुपरमैन के रूप में, फ्लाइंग एंजल के रूप में, कोई भी एक रूप ले ले अपना कोई भी रूप, तो नया फॉर्म ले लेना है। फिर है जी नया मार्गदर्शन, ये तो योग के लिए है कि योग में बैठने से पहले कि ये संकल्प करे जी फॉर गाइडेंस कि बाबा से मुझे नया मार्गदर्शन लेना है। एच फॉर हिम्मत और होप कि नई आशा और नई हिम्मत। इनसाइट समझ, परख या अंतर्दृष्टि, इनसाइट जर्नी नई यात्रा, ये सोचो आज की यात्रा नई यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है, जैसे कहा ऑलरेडी रूहानी यात्रा पे निकल रहे हैं। फिर कैसे किरदार, अपने पार्ट को देखना है, जैसे मैं अभी यात्रा ये आत्मा अभी ट्रेवल कर रही हूँ, वैसे मैं आत्मा ने इतना लंबा ट्रेवल किया है 5000 साल का, वहां से यात्रा चालू हुई और अब तक एक शरीर छोड़ा, दूसरा, दूसरा छोड़ा, तीसरा, कितने शरीर छोड़े, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, ये सारी मेरी यात्रा है और अब मैं आत्मा यहाँ हूँ। और ये भी यात्रा चालू है अभी, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के, जहां पर भी कर रहे हो। या दूसरा है मैं किंगडम में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, नीचे, वहां पे मेरा किंगडम है, वहां पे मेरा बहुत बड़ा राज्य है, वहां पे मैं एंट्री करूंगा। अभी मैं कैसे एंट्री करूंगा, 2 नंबर 6 नंबर किस गेट से एंट्री करूंगा तो गाड़ी कहाँ पार्क करूंगा, पुष्पक विमान, ये सोचो कि मैं बस में नहीं, किस में जा रहा हूँ पुष्पक विमान को तो व्हील भी होते होंगे ना, जरूरी थोड़ी नहीं ऊपर ही उड़ेगा, नीचे भी तो चल सकता होगा, लैंडिंग तो चाहिए ना उसकी, लैंडिंग के लिए व्हील, हाँ जगह बहुत है, तो लैंडिंग में व्हील तो होगी, तो कभी कभी तो व्हील से ही चलते हैं ना समुद्र के ऊपर। शिप में भी आप ये अभ्यास कर सकते हो। तो किंगडम, फिर है न्यू लैंग्वेज, नई भाषा का, कल कहा योग में नई भाषा का प्रयोग करो, नई भाषा, क्योंकि नई भाषा करते समय ध्यान रखना पड़ता है फिर कहीं गलती ना हो जाए। फिर है फिर मेकअप, बाबा भाषा, बाबा तक भाषाएं पहुंचती नहीं है, बाबा तक वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। 10 लोग हैं, एक तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, स्पैनिश, डच, फ्रेंच, अलग अलग भाषाओं में बाबा के बच्चे बाबा से बात कर रहे, बाबा तक क्या पहुंच रहा है, भाषाएं थोड़ी पहुंचती है, उसके एक तल के बाद में वो सारे वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं। मेकअप, फिर नया श्रृंगार करके जाना है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, ट्रैवल करते करते भी ये सोचना है, मैं कर्म क्षेत्र में अगर जा रहा हूँ तो कर्मयोगी का श्रृंगार करके हुए जाना है, कर्म क्षेत्र है, जो भी ड्यूटी के लिए जा रहे होंगे ना ट्रैवलिंग करते करते, ब्यूटी पार्लर में जा रहा हूँ, अच्छा ये भी कर सकते, मधुबन में आ रहे हैं तो ये संकल्प करके जाना है कि अभी मैं मधुबन जा रहा हूँ ना, ब्यूटी पार्लर में जा रहा हूँ, ठीक है संदीप भाई, तो यहाँ पे अभी सज धज के यहाँ से जाना है। नया नशा, एक नया नशा, एन फॉर नशा, ओ फॉर नया अवसर, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, सु अवसर है ये, एक बहुत सुंदर अवसर मिला है मुझे ये योग का प्रयोग करने का, ट्रेवलिंग। फिर प्लेस, नई जगह, अलग अलग जगह योग करो तो ये अच्छा है ना, परीक्षा हो रही है, यहाँ योग लगता है कि नहीं, इतनी भीड़ भाड़ में, इतना आवाज है, धक्के बुक्के इधर उधर से, नई शक्ति भर के जा रहा हूँ, नई प्रतिज्ञा, नया संकल्प, नया स्थान। फिर नया क्वेश्चन, एक प्रश्न लेकर जाओ, ट्रैवलिंग 1 घंटे का है तो ट्रैवलिंग से पहले मन में एक संकल्प लाओ, ये प्रश्न है, जब तक सफर पूरा हो जाए इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। क्वेश्चन, नया संबंध, रिलेशनशिप, आर, एक संबंध बाबा से जोड़ो, कोई भी, बाप, टीचर, सद्गुरु और साजन, 4 बोले हैं अगले संडे की मुरली में, 4 शब्द जोड़ो, 4 शब्दों, 4 संबंधों के लिए 4 स्लोगन, वफादार, फरमान बरदार, जो भी है। नया सम्मान या नया गीत, गीत गाते गाते जाने का, सफर करते समय गीत गाते हैं ना, गीत गाते गाते सुनते सुनते जाना, क्लास सुनते सुनते जाना, गीत सुनते सुनते जाना, मेडिटेशन सुनते सुनते जाना, करते जाना, सम्मान का अभ्यास करते जाना, नया गीत की भी रचना कर सकते हैं, नई कमेंट्री की रचना कर सकते हैं, नई कविता की रचना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रकृति के सौंदर्य दिखता है जाते जाते, तो नए नए संकल्प आते हैं मन में, तो नया संबंध, फिर नया थैंक यू, नया थैंक यू अर्थात नया धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद, एक पूरा योग धन्यवाद कहो, नया थैंक यू, नया धन्यवाद, जिस बात के लिए आज तक कभी धन्यवाद नहीं किया, नए तरीके से भी और नई चीज के लिए भी, जैसे कि किस चीज के लिए आज तक धन्यवाद नहीं किया, पैर भी बहुत अच्छा है लोगों के, हाँ देखो जिनके पैर ही नहीं है, आंखें मिली है कम से कम, लोगों के पास आंखें ही नहीं है, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बीमार नहीं है कम से कम, हॉस्पिटल में जाके देखो, पुरुषार्थ करना चाहते पर बीमारी ऐसी है कि छोड़ती नहीं, या एक बीमारी होती है तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बीमारियों पर बीमारियां चलती ही रहती है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। अगला है उत्सव, एक नया उत्सव, कौन सा उत्सव मनाएंगे आज, विट्ठल भाई दिवाली है आज, शिवरात्रि मनाओगे आज, दिवाली मनाओगे, होली, कौन सा नया मनाओ, जो भी अपने मन पर है, वो संसार जिस दिन मनाता है वैसा तो कुछ है नहीं, हर दिन मना सकते हैं। यू फॉर उत्सव, वी फॉर विजन, एक नया विजन क्रिएट करो, जाने से पहले ही मैं बस में बैठकर अमृत वेला ही देख लो, मैं जा रहा हूँ और मुझसे चारों तरफ पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है ये, कार में बैठ के जा रहा हूँ और ऊपर से छत्र छाया, ऊपर से किरणें पड़ रही है मुझकी, मेरे ऊपर, और कार में जाते समय ड्राइवर से ज्यादा कम ही बात करना, नहीं तो टाइम पूरा चला जाता है, हमने देखा है चुप रह कर ही चाहे तो फिर योग युक्त रह सकते हैं, डबल फायदा है उसका भी, और फिर डब्लू वर्ड्स, नए शब्दों का प्रयोग, जैसे मुरली योग में बाबा भी नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं कभी कभी, जो आज तक कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे शब्द आते हैं मुरली में कुछ कुछ, बाबा की तो डिक्शनरी अलग है, तो यहाँ पर भी योग के लिए अच्छे अच्छे शब्द, नए नए शब्द, नव शब्द, न्यूलॉजिज्म जिसको कहते हैं, नए शब्द चाहिए, न्यूलॉजिज्म, फिर न्यू जेनियम, जेनियम अर्थात उपहार, गिफ्ट, बाबा से कुछ सौगात ले ले, फिर न्यू योगी लाइफ, ये संकल्प करे कि ये नया योगी जीवन है तो क्या, अगर नया योगी जीवन है तो नए संकल्प, सब कुछ नया चाहिए, और अंतिम है जेड झील, झील अर्थात उमंग, तो हमने ये वर्णमाला योग इसका नाम दिया है, इसको कहा है अल्फाबेट योगा, अल्फाबेट योगा में से हम पहले तो अभी अगले एक हफ्ते तक ये सारा याद कर ले सभी, किस शब्द से क्या आता है, पहले थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना याद किए फिर आगे का अगला हफ्ता हो थोड़ा आसान हो जाएगा, पर पहला हफ्ता बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अमृत वेले या फिर जब भी योग में बैठते ए से लेकर जेड तक सारे शब्द रिवाइज कर ले, कर सकते हैं वो बाद में, पहले ये फर्स्ट स्टेप होती है पाठांतर, बच्चा जो होता है ना उसको शब्द वो बोलना नहीं सीखेगा, पहले एबीसीडी उसको पता चाहिए, एबीसीडी पता नहीं और चले वाक्य बोलने, पहले लर्न एबीसीडी, और यहाँ तो एबीसीडी वास्तव में एबीसीडी है ई का पार्ट पहले पक्का चाहिए। तो प्रश्न था कि ट्रेवलिंग करता हूँ 4 घंटा तो क्या करूँ, तो उसमें योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करे, क्लास अगर ये नहीं होता है तो क्लास सुने, कमेंट्री सुने, नहीं होता है तो, अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो नींद करने का भी समय है तो अच्छी नींद भी आ जाए थोड़ा, अगर स्थान अगर मिल जाए तो क्या कर ले, नींद कर ले थोड़ी अच्छी। अगला प्रश्न है 12वां, मुझे हिस्ट्री के टीचर ने पूछा कि पिरामिड की आयु 7500 वर्ष है, आप कल्प की आयु 5000 वर्ष है, आपके कल्प की आयु 5000 वर्ष है और सतयुग त्रेता में आपके सोने के महल होंगे, पिरामिड तो पत्थर के है, इसका क्या रहस्य है। यहाँ बात केवल पिरामिड की नहीं है, ये प्रश्न बहुत सारे तलों पर पूछा जा सकता है, धरती की आयु इतनी है, पिरामिड की आयु इतनी है, डायनासोर इतने इतने साल पहले हुए, या फिर ये जो पत्थर की आयु इतनी है, सागर की आयु इतनी है, सूर्य की आयु, ये सब, इन सब के पीछे जो मेन जो चीज है वो है कार्बन डेटिंग। तो सबसे पहले कार्बन डेटिंग को समझना बहुत जरूरी है। सारी आयु जो निकाली गई है कहाँ से निकाली गई है, कार्बन डेटिंग, डेटिंग एक मेथड है, या रेडियो आइसोटोप कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग जिसको कहते हैं। डॉक्टर लीबी करके एक व्यक्ति था, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये सबसे पहले कार्बन डेटिंग के सिद्धांत 1948 में प्रेजेंट किए थे। व्हाट इज दिस कार्बन डेटिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी जो आयु निकाली गई है कार्बन डेटिंग से निकाली गई है। उसी के आधार पर कहते हैं कि तुम कहते हो कल्प 5000 साल का है और यहाँ डायनासोर की उम्र तो बहुत बड़ी है, उसके जो अवशेष उसके जो ये मिले हैं उससे तो पता चलता है बहुत पहले थे। तुम कहते हो ये पर मिस्र में मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता या जो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तो बहुत पुरानी है, फिर 5000 साल कहाँ से लाया तुमने, ये तो एकदम गलत है। जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो भी अवशेष मिले हैं उससे तो पता चलता है बहुत पुराने थे वो। तो व्हाट इज कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से ही मेथड से निकाले गए, और इस कार्बन डेटिंग मेथड में कुछ दोष है। उस दोष के वजह से ये जो मेथड है और वो जितने फिगर निकाले गए वो सब गलत प्रूव होते हैं। सबसे पहले तो वातावरण में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कहते हैं वो है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास यूनिट जो है कार्बन का वो 12 है, पर एक दूसरा प्रकार भी होता है उसमें जिसमें एटॉमिक मास यूनिट जिसका 14 होता है। तो दो कार्बन हो गए, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो मैक्सिमम कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 जो है C14 वो थोड़ा सा अपर लेवल में बनता है रेडियो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन के वजह से। अभी कोई भी चीज का एक हाफ लाइफ होता है, जैसे कि ये किताब है या फिर ये मोबाइल है। अगर मैं कहूं कि इस मोबाइल का हाफ लाइफ 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष अर्थात कि आज अगर ये यहाँ है तो 5 वर्ष के बाद इसका किलो इसका जो वजन है, आज 5 किलो है तो वो 5 वर्ष के बाद में आधा हो जाएगा। इसको कहते हैं हाफ लाइफ। तो कार्बन का हाफ लाइफ जो है इट इज 5780 राउंड 5780 ईयर्स 5000 ये निकाला गया है। मतलब कार्बन आज अगर यहाँ है तो 5780 साल के बाद वो कार्बन जो है वो आधा हो जाएगा, पतन जिसको कहते हैं डीके, उसका डीके हो जाएगा। अभी ये सिद्धांत कैसे निकाला गया कि अभी मुझे इसकी आयु पता करनी है। ये जो झाड़ है खड़ा यहाँ पर, कोई बहुत पुरातन झाड़ है, जैसे पांडव वन में कोई झाड़ है, अगर ये लोग आ गया साइंटिस्ट तो उसकी आयु निकालेंगे। आयु से पता चलेगा कि ये झाड़ जो है वो 3000 साल पुराना है। कैसे किया उन्होंने, तो जैसे कहा कि झाड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और झाड़ प्लांट्स ये सब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रहता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड डेथ के बाद में उसके निकलने की जो प्रोसेस है C14 मेन C14 पर ही काम हुआ है सारा, C12 पर नहीं। C14 का जो है उनका कहना था कि C14 जो है उसका हाफ लाइफ है, और वो अगर हाफ लाइफ का उसका कैलकुलेशन किया जाए, जैसे कोई झाड़ 5000 साल 1000 साल पहले का आज अगर पता चला दिख रहा है, तो यहाँ आज कितना उसमें से उस झाड़ से C14 निकल रहा है, उस आधार से हम पीछे पीछे जा जाके वो अज्यूम कर सकते हैं कि कितना साल वो पुराना हो सकता है। इस तरह से रफली कुछ एस्टिमेट है उसकी। पर तो इसी आधार से ये जो रेशो निकालते हैं उसका C14 और C12 का, उस आधार से वो आयु उसकी डिसाइड करते हैं लगभग इतनी आयु होगी। उसी आधार से उन्हें ये जो पिरामिड जो बने हैं, सबसे ज्यादा मिस्र में है, इजिप्ट में ये पिरामिड है, जीजा नाम का पिरामिड है वो सबसे बड़ा है जो आज भी है। तो ये जो पिरामिड्स है वो किस लिए बनाए गए थे, वहां बहुत पुराने मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है, जितनी भारत की सभ्यता पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता उतनी ही पुरानी मिस्र की भी है। तो ये जो सभ्यता इतनी पुरानी है, वहां के जो राजाएं थे, राजा फेरो जिसको कहते थे, वो जब मर जाते थे तो उनके जो शव है डेड बॉडीज जिसको ममी कहते हैं उनको उस पिरामिड में रखा जाता है। और पिरामिड कैसा होता है, ऐसा त्रिकोण ऊपर से पॉइंट एक होता है, नीचे रेक्टेंगल भी हो सकता है क्वाड्रेंगल भी हो सकता है, 3 कोण भी हो सकते हैं 4 कोण भी हो सकते हैं। वो जो पिरामिड बने हुए हैं तो वो डेड बॉडी को रखने के लिए बनाए थे। और आश्चर्य है कि इतनी पर्यावरण में इतना बदल हुआ पर उनमें कोई बदल नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही है बहुत सारे। तो वो तो वहां कोई टेक्नोलॉजी शून्य का जगत था, फिर भी वो कैसे बनाए ये आश्चर्य है। पर हमारी यहाँ बात है कि ये भाई पूछ रहे हैं कि पिरामिड की आयु कोई कहते हैं कि, पर ये तो बहुत कम है, इतनी नहीं कहते, वो इससे भी ज्यादा कहते, ईसा के पूर्व 2000 साल 3000 साल यहाँ तक फिगर्स बताए हुए हैं। अब अगर हमारे सृष्टि चक्र में जाए तो ये पिरामिड सतयुग में बनने चाहिए, और वो कह रहे हैं कि तुम कहते हो सतयुग में महल सोने के थे, ये कहां से बने? एक्चुअली सतयुग त्रेता में ये नहीं बने हैं, ये सारे जो बने हैं द्वापर से बने हुए हैं। अब वापस हम आते हैं कार्बन डेटिंग के मेथड में। कार्बन डेटिंग में मेथड में कुछ दोष है, चार पांच दोष। सबसे पहला दोष तो ये है कार्बन डेटिंग के मेथड में कि कार्बन ये C14 का फॉर्मेशन डॉक्टर लीबी ने कहा था, अज्यूम किया था, एक पूर्वानुमान किया था कि ये C14 जो बन रहा है वो फिक्स्ड है, परंतु अभी देखा गया है कि वो फिक्स्ड नहीं है। C14 जो बन रहा है, C14 जो बन रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज आ गई है वो उसमें ऐड करिए। 1950s में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ है, उसके वजह से बहुत सारा एडिशन वहां से हुआ है, तो वो सेम कैसे बन सकता है? एक दूसरा, C14 जो डिके हो रहा है, हम जो कह रहे हैं ना हाफ लाइफ जिसको कहते हैं, कि आज अगर 5 किलो किसी के वजन है तो 5 साल के बाद में वह 2.5 किलो हो जाता है, इतना उसका टाइम लगता है। तो ये जो डिके है इसका भी पतन जो है वो जो पीरियड है जो 5780 साल बना है ये भी फिक्स नहीं है, परंतु डॉक्टर लीबे ने अज्यूम किया था कि ये फिक्स है, उस आधार से उसने सारा कुछ किया। तो डिके का पीरियड फिक्स नहीं है, उसके पतन उसका जो फॉर्मेशन है उसका पीरियड फिक्स नहीं है। फिर उसने कहा था कि C14 और C12 का जो रेशियो है वो भी फिक्स्ड है, परंतु अभी जो पता चला है उससे ये पता चल रहा है कि वो रेशियो फिक्स नहीं है। फिर उसने अज्यूम किया था कि प्लांट जो है झाड़ वो जो ग्रहण कर रहे C14 और C12 को सेम ग्रहण कर रहे, पर अभी पता चला है सेम ग्रहण नहीं कर रहे, वो अलग अलग कर रहे, C14 कम है C12 ज्यादा है। और हमारी बॉडी जो इमिट कर रही है C14 और C12 को, उसने कहा था वो भी समान इमिट कर रही है, परंतु वो समान नहीं कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस हैं, और फाइनली जो प्रूव हुआ है एक जर्नल ऑफ शिकागो में जो एक स्टडी पब्लिश हुई थी उसमें कहा गया, एक डॉक्टर ली करके है, 1981 में फाइनल उसने कहा कि ये जो मेथड है कार्बन डेटिंग की बहुत सारी त्रुटियों से भरी है, 5 तो हमने अभी बताई, ये 5 दोष उसमें है। इस आधार से फाइनल उसने कहा कि कार्बन डेटिंग की मेथड से जो भी फिगर आते हैं वो ओवर बताए जा रहे हैं, उतने नहीं है जितने हैं, जितनी एज है थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है, और ये सही है। उसने फिगर दिया 3000 और 3500 ईयर्स तक ही सत्य है बस। मतलब कार्बन डेटिंग मेथड से जितना कुछ पता चल रहा है वो केवल 3000 और 3500 वर्ष तक का ही पता चल सकता है, उसके पहले अगर कोई चीज है तो वो पता नहीं चल सकती, ओवर एस्टिमेट हो रहा है। जो बता रहे वो डायनासोर अरब खरब वर्ष हो गए उसको, दिस इज रॉन्ग, दिस इज साइंटिफिक डेटा जो पब्लिश हुआ है 1981 डॉक्टर रॉबर्ट ली 81 कि जिसने पब्लिश किया, उसने कहा कि दिस मेथड इज फॉल्टी। बहुत सारी फैक्टर्स है उसमें, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड जब आता है तो कार्बन का लेवल चेंज हो जाता है, डॉक्टर ली ने ये सारे कंसीडर ही नहीं किए थे उस समय। एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहा है, अभी इतना पोल्यूशन है, अभी तो वो तो डॉक्टर ली ने भी नहीं किया था जो 81 में उसने स्टडी की, अभी तो और भी ज्यादा पोल्यूशन है, कि अभी इतने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही इतने हैं कि वो जो रेशियो है C14 और C12 का वो चेंज हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते, क्योंकि वो सारा कार्बन डेटिंग उसके आधार पर है, जो भी एज निकाली जा रही है। झाड़ इतने साल पुराना, वो समुद्र की आयु निकालते हैं, पहाड़ की आयु निकालते हैं, हाँ मतलब ये जितने निकाल रहे बिलियंस और मिलियंस और ट्रिलियंस में ही निकाल रहे सारा। तो ये जितनी ये सारी मेथड्स में दोष है, त्रुटिपूर्ण है ये, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि राइट है। इसके लिए ये जो प्रश्न है भाई साहब का कि भाई तुम कैसे कहते हो, तो यही है क्या वो? तो ये सारा आपको अगर इसको बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, हम पिरामिड की चर्चा इधर मैंने ज्यादा नहीं की, वैसे पिरामिड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी और क्लास में केवल पिरामिड की चर्चा करेंगे, पिरामिड्स कैसे बने, क्यों बने, क्या उसके पीछे राज है, और कैसे कैसे वो अभी उसकी क्या हालत है, और उसमें किस प्रकार का वायुमंडल होता है अंदर बैठते ही। जैसे बैंगलोर में हम गए थे एक बार, वहां पर एक पिरामिड है, देखा है किसी ने बैंगलोर का पिरामिड? हाँ, बैंगलोर का पिरामिड जाते ही एकदम शांति का अनुभव होता है, कौन से वाइब्रेशन से उसमें पता नहीं, एकदम वहां पर जाके मेडिटेशन करते। कौन सी जगह है वो नागराज? कनकपुरा। हाँ हमें वो दो तीन भाई लेके गए थे कभी, हम तो बहुत साल हो गए, साइंटिफिक रीजंस उसके बहुत सारे पिरामिड्स के। तो पिरामिड्स जो भी बने हैं सब द्वापर से बने हैं, क्योंकि देवी देवता पिरामिड नहीं बनाते थे, उनको क्या करना है पिरामिड बनाकर, वो क्यों अपनी डेड बॉडीज। यहाँ तो ये जो थे मिस्र के राजाओं के प्रति इतना प्यार था, इतना प्यार था कि राजाओं के शरीरों को वहां रखते थे, यहाँ तक कि दास दासियों को भी साथ में दफनाए दिया जाता है उनकी सेवा के लिए क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, तो उनकी सेवा कौन करेगा, दास दासी, जिसने जिस नौकर ने सारी उम्र राजा की सेवा की, मरने के बाद उस राजा की कौन करेगा सेवा। तो उसके साथ ही दास दासी, यहाँ तक कि भोजन, यहाँ तक कि खाना, यहाँ तक कि कपड़े अच्छे अच्छे वो भी सारा दफनाया जाता था, वहां रखा जाता था। हाँ जिंदा 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 ही, ये सारा दोबारा आत्मा का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, जिंदा होंगे। तो ये जो है कि पिरामिड तो पिरामिड की आयु फाइनल जो कार्बन डेटिंग का डॉक्टर ली ने कहा है कि 3000 और 3500 बस। तो हम ये कह सकते हैं द्वापर से, उसने तो 3000, मैं तो कहूंगा 2500 बस, अकॉर्डिंग टू अवर साइकिल द्वापर के बाद ही सारा चालू हुआ है। अगला प्रश्न, हमारा बेटा 12वीं में है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता, हम बहुत परेशान है, किसी की भी नहीं सुनता, जो मन में आता है वही करता, हम 5 साल से ज्ञान में, हम क्या करें। बोलो, जो माताएं हैं वो बताएंगी, ये माताओं का ज्यादा प्रश्न है, बच्चा है सारे दिन भर मोबाइल में, सारी दुनिया भर की हिंदी इंग्लिश सारी मूवीज डाल के रखी है, 24 घंटे लगा रहता है, मूवीज नहीं तो गेम्स, और गेम्स नहीं तो बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कुछ ना कुछ करते रहता है, उसी में लगा रहता है। माताओं की तरफ से कोई उत्तर, सुधा माता क्या करे, और राजकुमार भाई क्या कर जाए, मोबाइल पे लगे हुए, राहुल भाई, विनय भाई, सागर भाई, सबसे पहले तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये मोबाइल पे लगा रहता है, उसको अगर जबरदस्ती करेंगे तो और ज्यादा करेगा। सबसे पहले तो जबरदस्ती नहीं करनी है, क्या करना है, उसका इंटरेस्ट दूसरी चीजों में बढ़ाना है, एक तो ये, पहले उसको समझाना है उससे क्या क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट सब कुछ बताना है, उसको क्लियर बताना है, ऐसे नहीं कि उसको जबरदस्ती करो कि ये तुम क्यों करते रहते हो, वो तुम क्यों करते रहते हो, ये नहीं, उसको समझाना है, एक तो ये। दूसरा, हो सके तो उसका स्मार्टफोन है उसको सादे मोबाइल में कन्वर्ट कर दो, जिसमें कोई एप्स नहीं है, जो सिंपल सा मोबाइल है वो नहीं मानेगा। अच्छा ठीक है, अब एक तो ये, दूसरा, अच्छा दूसरा और क्या कर सकते हैं, हाँ तो उसको वही फायदे और नुकसान के बारे में क्लियर कट समझाना है, ये मोबाइल से ये होता है, ये होता है, और उसका इंटरेस्ट जो है किसी और चीज में क्रिएट करना है, जैसा अभी उसको इसमें इंटरेस्ट है ना, तो उसको वास्तविक लाइफ क्या है, रियलिटी क्या है, उससे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कराना है, उसको समझाना है, उसको ज्यादा ये भी नहीं करना है कि देखो कंपैरिजन भी नहीं, परंतु हाँ उसको नए इंटरेस्ट, नई हॉबीज क्रिएट करानी है, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करना है, वो रिलीजियस एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, या उसको अनाथालय या हॉस्पिटल में, जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, क्योंकि मोबाइल में जीना अर्थात वो एक नए दुनिया में जीता है, अपनी एक काल्पनिक भ्रमित कल्पना के जीवन में जीता है। एक व्यक्ति केवल मूवीज ही देखता रहता है, उसको लगता है मूवीज में जो हो रहा है ना, ये जो प्यार मोहब्बत इश्क और ये सारा जो दिखा रहे यही सत्य है, परंतु जीवन वो नहीं है, जीवन कुछ और है, जीवन की वास्तविकता कुछ और है, वो एक दिखावा नाटक मात्र है, वो जो एक्टर्स और वो सारे उनका भी जीवन जाके देखो वो कुछ और है, वास्तविक जीवन में वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, उसके पीछे कितने सारे डायरेक्टर और ये वो क्या बहुत सारे लोग हैं, पर वो उसको लगता है बस यही जीवन है, इसमें जो दिखा रहा है ना बस ये ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही करूं, उसको लगता है मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए कुछ, तो वो एक भ्रम है, भ्रम का जीवन जीता है वो। अच्छा मोबाइल में इंटरेस्ट है तो क्यों इंटरेस्ट है उसको मोबाइल में, जरूर उसको कुछ मिल रहा है वहां से, कुछ प्राप्ति है, कुछ सुख है, कुछ प्राप्ति है, कुछ उसका टाइम उसमें जा रहा है, उसको समझाना है कैसे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हाँ बेटा जरा मोबाइल से मुझे मुरली सुना दे, आज मैं सुन नहीं सकती, आज मुझे वो दे तो वो किसी भी मैंने युक्ति से उसका मोबाइल में ही मोबाइल वरदान भी हो सकता है। अभिशाप है तो वरदान भी तो है उसमें सारा ज्ञान का, अगर उसको ज्ञान में स्पिरिचुअल मोबाइल बना दे तो स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो, स्पिरिचुअल साधन बन जाएगा वो। हाँ उसके एप्स, हाँ मतलब हाँ। दूसरा और एक चीज, एक टाइम फिक्स कर ले, 8 बजे के बाद में बंद, रात में नहीं, 8 से सुबह 8 बजे तक नहीं मिलेगा, दिन भर यूज करो। फर्स्ट नंबर आएगा तो यही नाम देंगे, बड़ा वाला देंगे। तो कुछ भी मतलब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना। दो पार्ट है इस प्रश्न के, एक तो मोबाइल, दूसरा पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना। एक एक चित्र बहुत अच्छा था 1997 का और 2017 का। उसमें एक पहला चित्र था जिसमें मम्मी जो है वो बेटे का कान पकड़ के उसके घर पे ला रही है, सारे दिन भर बाहर खेलता रहता, चल अंदर घर पे। अब अभी 2017 का है, वो मोबाइल पे लगा हुआ है, सब दिन घर पे बैठा रहता है, चल बाहर। तो वो तब भी बाहर उसमें लगा हुआ है, उसका कान खींचकर बाहर लेके जा रही, चल बाहर खेल। तो ये युग परिवर्तन हुआ है इस तरह से कि मोबाइल ही जैसे सब कुछ हो चुका है, जीवन बन गया है। तो उसको उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना है, युक्ति से उसका ध्यान वहां से हटाना है। हाँ, और दूसरी एक बात, हर एक आत्मा का पार्ट अपना है। ये मत समझो कि जो मेरे घर में जन्म लिया है वो महायोगी और महातपस्वी बनेगा। आजकल एक दूसरी माया ये है कि जो भी ब्राह्मण युगल है वो सोचते हैं हमारा जो बेटा है ना, जो एकदम छोटा सा है अभी 4 साल 5 साल का, वो सोचते हैं ये एडवांस पार्टी की आत्मा है। वो सोचते हैं देखो ये कितना अच्छा ज्ञान सुना रहा है, कितना अच्छा मुरली सुनाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा है 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक बहुत ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, मुरली में जाते हैं, संदली पर बैठते हैं, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर अपने रंग दिखाने चालू करते, फिर कहां गई वो आत्मा पता नहीं। तो वो फिर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जब से आए ना तब से ही हम दोनों ज्ञान में आए, हमको ज्ञान में आने का ये बच्चा ही निमित्त बना, ये मधुबन लेके आया। तो ये एक हर आत्मा का अपना पार्ट है, हम नहीं कह सकते कि ये क्या बनेगी आत्मा। खलील जिब्रान की कविता है, यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन बट दे आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो पूरा लिखता है माँ बाप को कि तुम्हारे बेटे को अपना बेटा नहीं समझो, वो उपहार है, उसका अपना जीवन है, वो अपने तरीके से उसको बड़े होने दो, जबरदस्ती नहीं करो उसके साथ कुछ भी। वो जो बीज है जो उसको होना है वही होगा, तुम केवल उसका खाद दो, पानी दो, जो देना है दो, पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो बीज लेकर आया है वो बीज वही होगा, वही बनेगा। इसके लिए यहां और एक चीज चाहिए, डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा अगर अटैचमेंट है तो दुख होगा, अटैचमेंट जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके लिए डिटैचमेंट चाहिए यहां बीच बीच में। हाँ, बाबा को बच्चा बनाने से इस बेटे का आकर्षण, बड़ा बड़ा कठोर पुरुषार्थ है, ये तो मेहनत का पुरुषार्थ है, पर हो सकता है, परंतु बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसमें, सब नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो उसको भी योग में बिठाना, अच्छा उसको सकाश देना थोड़ा रोज सुबह, भोजन पर काम करना। अभी अगला अंतिम प्रश्न है, सुशील भाई इसका जो उत्तर आया है वो लिख के भेजा है ना, 90 नंबर का PDF फाइल, वो पढ़ो, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप उत्तर पढ़ो। लिखा है प्रश्न बहुत ही बड़ा है, और बाबा ने ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके उत्तर दिए नहीं है ये, और हमें नहीं लगता कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद भी कोई अध्यात्म में उन्नति होने वाली है। इनका सीधा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं है, ये बौद्धिक विलास है, इंटेलेक्चुअल पास्ट टाइम्स जिसको कहते हैं। तो ये प्रश्न है, मृत्यु कैसे होती है, अर्थात आत्मा शरीर से अलग कैसे होती है, जो वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती या उस रथ को ऑपरेट नहीं कर पाती। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो कैसे अपनी एनर्जी समेटती है, जैसे कि विवेकानंद की कहीं बातों में जाना कि वह सिर से लेके पांव के तले तक आत्मा घूमती है या मूव करती है, फिर बॉडी से अलग होती है, फिर जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब से लेके 12-13 दिन तक क्या महसूस होता है, कैसे दिन निकालते हैं, इस 13 दिन की विधि से क्या होता है, और वह कहाँ रहती है, अर्थात कुछ ऑरा या कोई सूक्ष्म शर्त बनती है कि वह जिससे दूर जा ना सके, फिर कैसे यह तय होता है अगला जन्म किस तरह वह आत्मा के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में प्रवेश कर फिर घर में खुद बन करके नए शरीर से टच होती है, हमें साइंटिफिक व्यू से जानना है जिससे लॉजिक हो डिटेल के साथ। 13th day फिल्म है वो देखे। एक दूसरा एक तो दूसरी जैसे आत्मा जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा संपूर्ण शरीर से डिटैच हो जाती है, संपूर्ण रीति से शरीर से अलग हो जाती है, जैसे ये शरीर और शरीर के ऑर्गन्स एक तरफ और आत्मा एकदम अलग, जब बस अब निकलने ही वाली है यहाँ से। और जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में बताया, वो देखा ना उनको, उनके अंकल को, चाचा को, कि कैसे यहाँ आत्मा थी, फिर पूरे पैरों के तले तक, आत्मा के अंगूठे तक, और फिर पूरी ऊर्जा वापस यहाँ आई और फिर आत्मा निकल गई। तो है तो ऐसा ही कि आत्मा जो है अपनी पूरी एनर्जी ऊर्जा को समेट कर एक पहले तो सारे शरीर में फैलती और फिर वापस भ्रुकुटी के मध्य में आती है सारी ऊर्जा और फिर वहां से निकल जाती है। और साथ में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है क्या? वाइब्रेशंस, हमारे सैकड़ों सूक्ष्म शरीर है, कोई एक सूक्ष्म शरीर नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों सूक्ष्म शरीर, इतने सारे सूक्ष्म शरीर, परंतु इस जन्म का जो उस समय का जो सूक्ष्म शरीर है वो एक सूक्ष्म शरीर उसके साथ वहां से निकल कर, और क्योंकि आत्मा इतनी अटैच होती है ना वो शरीर संबंध, तो वहीं आसपास रहती है, शायद घूमती होगी उस मित्र संबंधियों, जैसे 13th day मूवी है उसमें दिखाता है कि वो उसको कितना अटैचमेंट था अपने परिवार के साथ, बट जब निकलता है तो देखता है देखो ये लोग कैसे खुश हो रहे, मैं तो व्यर्थ में ही दुख कर रहा हूं इनके लिए, मुझे कितना अटैचमेंट था इन सब की वजह से, तो हमको लगता है बहुत अटैच, ये सब हमको बहुत प्यार करते है, वो तो बाद में पता चलता है निकलने के बाद। इसके लिए तो कहा ये भी अभ्यास करते रहो, अपनी ही स्मशान यात्रा, अपनी ही चिता को जलते हुए देखना और लोगों की बातें सुनना, फिर विट्ठल भाई वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है अच्छा हुआ धरती का भाव और बोझ कम हुआ, कोई कह रहा है कब तक रुकना है भूख लग रही है चलो जल्दी, फिर कोई कह रहा है भोग बना कौन गया, किसको तो पता ही नहीं हम गए वो तो उसने भोग देखा हलवा तब पता चला कोई गया क्या, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम सोचते थे ये हम सोचते हम इररिप्लेसेबल है, हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये डिपार्टमेंट मेरे वजह से चल रहा है, और हम जाने के बाद पता चला हम ही बाधा थे, देखो दूसरा आया तो कितनी उन्नति हो रही है तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ वो देखो झगड़ा और क्या क्या हो रहा है, हम गए क्या, हमारे मोबाइल के लिए भी झगड़े हो रहे हैं, कपड़े क्या हो रहा है नीचे, अरे तो ये तो आत्मा संपूर्ण डिटैच हो जाती, इसके लिए आत्मा किस स्थिति में जाती है, शरीर को छोड़ती है, वो बहुत जरूरी है। संपूर्ण अनासक्त जो आत्मा होगी ना उसका ही जो दूसरा जन्म, ऐसे माँ बाप को गर्भ ढूंढती है जैसे योगी आत्माओं का गर्भ ढूंढती है, वो वहीं जाकर जन्म लेगी, और जो वासना से वासना युक्त होकर शरीर छोड़ती है वो आत्मा वासनामय शरीर में जाती है, वैसे माँ बाप जो वासना युक्त है वो उन्हीं के गर्भ में वो आत्मा जाएगी, परंतु ऐसे योगी माँ बाप जो होते हैं जो केवल संतति के लिए ही विकार में जाते हैं वैसे गर्भ में वो प्रवेश करेगी योगी आत्माएं। तो कैसी स्थिति है, तो आत्मा जब निकलती है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर जाती है और नए गर्भ में स्थापित होती है और वहां पर फिर से नया सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, और इस सूक्ष्म शरीर जो पहला था उसकी बहुत सारी चीजें जो पावरफुल चीजें वाइब्रेशन यादें कहो याददाश्त कहो वो तो साथ में लेके जाती है और फिर नया जीवन चालू होता है वहां से। तो ये एक प्रोसेस है। और क्या पूछा इन्होंने, वो साइंटिफिक प्रैक्टिकल मतलब कितना दिन घूमती रहती है, अभी वो 13 दिन का बात है परंतु बाबा ने कही है कि हमको पता नहीं, बहन जी ने कुछ उत्तर लिखा है पर डायरेक्ट उत्तर तो नहीं है उसके, उसमें
इस बारे में प्रश्न के बारे में वास्तव में बाबा ने तो कुछ जिक्र किया नहीं है, फिर भी बहन जी ने लेकर भेजा एक, मृत्यु जो पार्ट के साथ हिसाब का पूरा हो जाए, स्थूल कारण कोई भी बने, जैसे घर में हवा पानी रोशनी पर्याप्त नहीं मिलती तब प्राय लोग ऐसा मकान छोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार शरीर के पार्ट भी कार्य करना बंद करते हैं और आत्मा शरीर से निकल जाती उसके कारण उसका पार्ट पूरा होता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कोई फैक्ट्री बिजली से चलती है तो वह हर पार्ट को चलाती है, पर स्विच को ऑफ करने पर हर पार्ट से बिजली खींचती नहीं है, सप्लाई बंद कर देती है। ऐसे ही रोशनी को पूरे रूप से बल्ब खींचता नहीं है, पर ऑफ होने पर पूरे रूम से प्रकाश चला जाता है। जैसे ड्राइवर को गाड़ी का पिछला पहिया चलाने के लिए पीछे नहीं जाना पड़ता, पर उसके पास ऐसा सिस्टम है कि एक जगह बैठकर पूरी गाड़ी पर नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार आत्मा के शरीर से निकलने पर उसके पावर का प्रभाव बंद हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई भी आत्मा जब अचानक चाहे किसी कारण से शरीर छोड़ती है तो अपने परिवार के साथ शरीर को जल्दी नहीं भूल पाती, इसलिए वह शरीर के साथ घर के आसपास ही चक्कर लगाती रहती है। इसलिए जो बच्चे पुनर्जन्म की बात करते हैं उनकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई होती है। जैसे कई बार अचानक घर से जाने के बाद कई कार्य अधूरे होने के कारण जहां गए होते हैं वहां से मन यही लगा रहता है। जो गहरी बीमारी या बुढ़ापे या परिवार की अवहेलना में शरीर छोड़कर जाते हैं वे लोग कभी पुनर्जन्म की बात नहीं करते। आत्मा के लिए दिन रात तो कोई मायने नहीं, पर लाइट के शरीर में तो अवश्य रहता है। आत्मा के हिसाब किताब किससे हैं? आत्मा को तो पता ही है, शरीर में रहने के कारण भूल जाती है। इसके दो उदाहरण हैं, एक परमात्मा का अवतरण कब और कैसे। इस किताब में एक समाचार है कि एक पीर की आत्मा मनमोहन नाम के लड़के में प्रवेश करती है जो बदला लेना चाहती थी, 1000 वर्ष बाद बदला ले रही है और अरब जैसे काफी दूर से आई है। दूसरा अविनाशी ड्रामा की किताब में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा मौत हो गई कहने पर कई 100 किलोमीटर दूर अपनी पत्नी के पास किसी पार्टी में पहुंच जाता है। देखने पहचानने न पहुंचने की स्पीड शरीर से निकलने पर बढ़ जाती है। तो ये उत्तर है इसके। और कोई उत्तर किसी का भी जिसने मृत्यु के तुरंत कोई अनुभव किया तो बता दो, या कोई करने वाला तो वो ही बता दो।
हाँ, मृत्यु तो हमने काफी देखी है, हजारों आत्माओं को शरीर छोड़ते देखा है, हजारों से भी ज्यादा इतने सालों में। परंतु वैसे तो कोई दिखाई नहीं देता है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है या कभी सडन डेथ भी होती है। कई बार तो ऐसे बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ब्रॉड डेड लेकर, थोड़ी सी सांसें चलती होती है कभी कभी, फिर उसको रिससिटेट करते हम, CPR करते सब कुछ करते, उसके बाद में भी वो नहीं रह पाती। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक पेशेंट का हमने देखा कि ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन आ गई थी, उसको CPR किया, रिससिटेट किया, 1 घंटा तक चला, 1 घंटे के बाद वापस रिदम आ गया और रिदम आने के बाद में वो पेशेंट रहा 24 घंटे, फिर गया। वैसे ही हमारी बिंदु माता थी इधर पांडव भवन में, बिंदु माता का CPR किया, सब कुछ किया, ऑलमोस्ट जा चुकी थी, सब कुछ किया, उसके बाद में रिदम आ गया और वो ठीक भी थी 1-2 दिन वो भी, पर एक अजीब सी अवस्था थी उनकी वो 2 दिन, और फिर शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे भी बहुत सारी आत्माओं को हमने देखा, और कुछ कुछ आत्माओं को जैसे पता ही रहता है कि मैं जाने वाली हूँ। जैसे मॉरिशस की एक माता आई थी, उसने पहले मॉरिशस में अपने बेटे को कह दिया था कि मैं मधुबन जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। यहाँ आई और क्या हुआ पता ही नहीं चला, बेहोश हो गई, यही थी ना, यहाँ से लेके आए, फिर वो वेंटिलेटर पे थी, 7 दिन तक चला और फिर शरीर छोड़ दी। कई सारी आत्माएं, तो बहुत सारी आत्माओं को थोड़ा 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 उनको मतलब वो पूर्वाभास हो जाता है कि हम जाने वाले।
तो जो
जितने मधुबन में जितनी आत्माओं ने मतलब मधुबन निवासियों ने, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी समय हमें ये बात कही थी कि हम जाने वाले। पंकजा बहन से लेकर तो जितनी भी आत्माएं यहाँ पर गई है, गोपी बहन, संजय भाई, चिनू भाई, ये जितनी है कहीं ना कहीं ओपड़ी में हमें याद है, ओपड़ी में या यहाँ या वहां या कहीं ना कहीं इन आत्माओं के संपर्क में रहते। कुछ कुछ आत्माओं ने तो ये भी कहा था कि इधर ही जाने देना, कहीं भेजना मत, पर जिन्होंने नहीं कहा था वो कुछ कारणवश, कुछ नियम कहो जो भी कहो, वहां उनको जाना पड़ा, तो हमने उसमें इंटरफियर नहीं किया। पर जिन्होंने हमें स्पष्ट कह दिया था कि यही, उनको हमने कहीं भेजा नहीं कभी भी।
जो बिंदु माता ने श्री छोड़ा था 24 घंटे बाद कह रहे आप, फिर वापस आ गई।
हाँ, हाँ, हाँ।
तो नेक्स्ट जब श्री छोड़ा तो हो सकता है बाद में भी आ सकती थी, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया
नहीं, वो शरीर छोड़ा नहीं था, मतलब जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, अरेस्ट सिचुएशन में पूरा फ्लैट लाइन मॉनिटर पे दिखाता है, जिसमें हम कर रहे सब सीपीआर सब कर रहे हैं और उसके एक घंटे के बाद मतलब लगा कि ये तो बिल्कुल मुश्किल है आना, पर उसके बाद में भी रिदम रिज्यूम हुआ, रिदम आ गया उसमें। तो ये जो मृत्यु है एक ऐसी एक मिस्टीरियस जिसको कहेंगे रहस्यमय चीज है। अभी हमने इतनी मृत्यु मतलब बहुत सारी देखी, पर हर एक की अलग 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 रीति से दिखी। अपने सुदाम भाई कितने अलग अलग, मतलब हर एक ने जो शरीर छोड़ा है, और हमने देखा कि मधुबन बहुत सारे यहाँ निवासी है बाहर के, बहुत सारी कईयों की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्थिति, जिसमें बिल्कुल निश्चिंत होके जैसे कुछ। हाँ कौन से, ये पहले की बात है शायद, हाँ थोड़ा सा पहले। तो ऐसा बहुत सारी आत्मा है जिन्होंने मतलब जिनको थोड़ा सा आइडिया थी, और कुछ कुछ का तो ऐसा था कि कुछ मतलब लग नहीं रहा था, परंतु फिर भी कुछ। हाँ पर ये तो हमारा ब्रह्मा कुमारी का कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है। स्वामी शिवानंद की एक किताब है डिवाइन लाइफ सोसाइटी की, शरीर छोड़ते समय आत्मा की स्थिति क्या है, कब छोड़ती है, कैसे दूसरा गर्भ तैयार होता है, यहाँ ही बैठ के आत्मा कैसे उस गर्भ का निर्माण करती है कहीं और, वो सारी चीजें, कैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करने के बाद उस शरीर का भी निर्माण आत्मा ही करती है, ये बहुत सारी सूक्ष्म बातें है उसमें। रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी है अभेदानंद, उन्होंने भी इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, ये तो नया सब्जेक्ट नहीं है। 13 मुरलियों में तो बहुत सारी चीजें आई नहीं है, ये तो हमारे अजम्पशन से सारे। किसी को 2 मास भी रखा ना फिर,
तो
किसी को
1 मास भी रखा, नीचे वालों ने प्रक्रिया ऐसी बना दी कि 13 दिन रखना पड़ा बाबा को। प्रक्रिया इधर बनाई।
चलो ओम शांति।